नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं स्मिता माथुर। मेरी इस चैनल मालती के फूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है बचपन। शायद इसको सुन के आपको अपना भी बचपन याद आ जाए। बस उस दिन मैं दोपहर को सोई थी, और सो के उठने के बाद जो वो अर्ध निद्रा की अवस्था होती है, उसमें मुझे अचानक ही वो गीत सुनाई दिया जो रेडियो में आ रहा था, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली मन। तो बस उस गीत के साथ ही ना जाने कितनी यादें मेरे मन में उमड़ने लगी, मुझे अपने बचपन याद आने लगा। और अक्सर ही ऐसा होता था जब युवावस्था की संघर्ष में जूझ रहे होते हैं या प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, उस समय हमको अपना वो लहराता बलखाता बचपन बहुत याद आता है। और तब ऐसा लगता है इस बच किसी को बताएं कि हमारा बचपन कितना प्यारा था, उसमें ये संघर्ष नहीं था, बहुत सुंदर था। लेकिन किसके पास इतना टाइम है जो हमारे बचपन की बातें सुने। तो बस एक दिन मैंने अपनी कॉपी उठाई और अपना कलम उठाया और अपने बचपन की सारी यादें जो जो मेरे मन में आई उनको मैंने लिखना शुरू कर दिया। और बस लिखते लिखते जो है वो एक पूरा आर्टिकल बन गया, एक कहानी सी बन गई, और जिसका नाम है बचपन। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी जिसका नाम है बचपन। मैं माता पिता की इतनी लाडली संतान। वो समय जब लोगों के बहुत सारी लड़कियां होती थी और कई लड़कियों के बाद एक लड़का होता था। कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि मैं तीन भाइयों के बीच की अकेली बहन थी। तो हमेशा से ही बचपन से ही मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला और बहुत ही वांटेड चाइल्ड थी। तो बस इस कहानी की जो छोटी सी हीरोइन है जिसका नाम मेघा है, वो आप समझ सकते हैं कि कौन है। वो मेरे ही बचपन की कहानी है। तो चलिए प्रस्तुत है मेरी कहानी बचपन। वो चार भाइयों के बीच की बड़ी लाडली बहन थी। माँ बाप उसे सर आंखों पर रखते, मम्मी उसे तरह तरह की फ्रॉक्स और ड्रेसेस बनाकर पहनाती। रक्षाबंधन के दिन जब चारों भाई अपनी कलाई आगे फैलाते तो जैसे वो खुशी से झूम उठती। अक्सर फिरोजी रंग का लहंगा और चुनरी पहनकर या मम्मी की बनाई सुंदर सी फ्रॉक पहनकर वो कॉलोनी भर में घूमती रहती। गर्मियों की शाम को सारे बच्चे, बहुत बड़ी कॉलोनी थी तो बहुत सारे बच्चे थे, गर्मियों की शाम को सारे बच्चे सबसे बड़े बंगले के लॉन में इकट्ठे होते। बड़ा सा बंगला था पीले रंग का, और उसके सामने बड़ा सा लॉन था, गार्डन था। और देर शाम तक छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग और चेन चेन खेलते रहते। उसी कोठी में झूला भी लगा हुआ था, दो दो बच्चे इकट्ठे झूलते और पेंगे मारते मारते झूला आकाश को छूने लगता। और एक दिन उसी झूले से, जब झूला सबसे ऊंचाई पर था, उसके हाथ छूट गए थे और वो तेजी से नीचे गिरी थी। धूरी संध्या का समय था, कुछ देर तो उसको कुछ भी दिखाई देना ही बंद हो गया। फिर कॉलोनी के बच्चे ही उसको उठाकर ले गए और घर पहुंचाया। लेकिन ईश्वर की माया, इतने ऊपर से गिरकर भी उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, सिर्फ हल्का सा चक्कर आया था। सावन आने पर नीम के पेड़ पर भी खूब मोटे रस्से में पटरे वाला झूला पड़ता, जिस पर कई बच्चे इकट्ठे झूलते। उसी बड़े घर के पिछवाड़े एक कब्र भी थी, एक कब्र बनी हुई थी बहुत पुरानी। सब बच्चे वहाँ जाने से बहुत डरते। बड़ी आंटी जो कुछ सांवले रंग की बड़ी उम्र की 45-46 साल की थी और चश्मा पहनती थी, जहाँ हम लोग की मम्मी लोग उस समय 30-35 साल की थी, वो काफ़ी बड़ी 45-50 साल की उम्र की थी, इसलिए हम सब उनको बड़ी आंटी कहते थे। बड़ी आंटी कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा करती और गार्डन की मुलायम घास पर बैठकर भूतों के किस्से सुनाती। एक तो वहाँ कब्र थी, ऊपर से भूतों के किस्से। सब बच्चे खूब डरते और डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। घर आते समय धूरी संध्या में जब घने नीम के पेड़ के नीचे से निकलते तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, क्योंकि ऐसा बताया था आंटी ने कि नीम के पेड़ के ऊपर भूत रहता है। तो सब बच्चे बहुत डरते थे भूतों से। कभी कभी बच्चे सब छतों पे इकट्ठे हो जाते और डॉक्टर डॉक्टर या घर घर खेलते। वहां लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं था। गर्मी की दोपहर को सारे बच्चे बड़ी आंटी के घर इकट्ठे होते और सांप सीढ़ी, कैरम तो कभी लूडो खेलते। कूलर के ठंडे पानी में पीपल के पत्ते डाल दिए जाते और पड़े पड़े ही वो पत्ते ट्रांसपेरेंट हो जाते, पता नहीं कैसे, और उन पर फिर पेंटिंग बनाते सब लोग। बड़ी आंटी की 7 लड़कियां और एक छोटा सा बेटा था, नाम था बबलू। 3 साल का होगा बबलू बस। सबसे बड़ी दीदी 12वीं में और सबसे छोटी 1st में। बबलू तो अभी 3 साल का ही था, बड़ा लाडला बेटा। संडे को बड़ी आंटी की सारी लड़कियां, वो सब दीदी लोग आंगन में बैठ जाती और बाल्टियों में खूब सारा सर्फ का झाग बनाती और उसमें डुबो के अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स धोती। एक और बहुत प्यारी सी याद जो हम बच्चे देखते थे, एक वहाँ मनु चाचा थे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग के बगल में जो अंकल रहते थे उनके भाई थे। अब तो सपना से याद है, बड़े हैंडसम थे। पड़ोस में रहने वाले एक दीदी से उनका अफेक्शन था, कुछ अफेयर था उनका। गोरी लंबी पतली नाजुक सी दीदी, वो दोनों घर की मेहंदी वाली हेज के आर पार खड़े हो जाते और पता नहीं क्या क्या बातें करते। हम बच्चे उनको देखा करते। एक बार मनु चाचा की बड़ी दीदी आई हुई थी, बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी और मैरिड थी। तब मनु चाचा और उन दीदी ने मिलके एक पार्टी में ये युगल गीत गाया था। मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। उन्होंने इतना प्यारा गाया था कि ये गीत नन्ही सी मेघा के दिल पर अंकित हो गया था और आज तक बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस सुंदर सजीली दीदी की शादी कहीं और तय हो गई। मनु चाचा उदास उदास रहने लगे, उनके चेहरे की कांति ही लुप्त हो गई। दीदी की शादी के फंक्शन में उन्होंने गाया, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। बस ऐसे ही हंसता गाता बचपन। कॉलोनी के सारे लड़के मिलकर मैदान में क्रिकेट खेलते। अपने बैट और बॉल से। कोई छोटे साहब का बेटा होता, छोटे साहब मतलब इंजीनियर साहब, और कोई ड्राइवर का, लेकिन बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। राजीव और संजीव पूरी कॉलोनी में अकेले थे, जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, अंकल थे उनके बेटे थे। बाकी सभी बच्चे हिंदी मीडियम में थे। वो दोनों लड़के धड़ाधड़ इंग्लिश में गालियां देते, मास्टर और जाने क्या क्या। एक बार क्रिकेट खेलते समय राजीव और उस ड्राइवर के बेटे डुंगू की लड़ाई हो गई। राजीव को ऐसा गुस्सा आया कि उसने घर से चाकू लाकर डुंगू के पैर में ही भोंक दिया। बच्चे तो थे, गुस्सा आ गया बस। डुंगू खून से नहा गया और राजीव खून से सना चाकू लेके बक बक करता रहा। उस समय राजीव मुश्किल से साथियों में रहा होगा। डुंगू को बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया गया और राजीव को उसके पेरेंट्स ने घर से दूर देहरादून के आर्मी स्कूल में भर्ती करा दिया। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ था। मेघा की मम्मा उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनवाती, अकेली बच्ची थी तो उनको बड़ा शौक था। एक बार कॉलोनी में एक शादी थी। मेघा की मम्मा ने उसके लिए एक सैप ग्रीन कलर की वाइट लेस लगी फ्रॉक सिलवाई, जिसमें कैन कैन लगता था। बड़ी सुंदर, बड़ी महंगी पार्टी फ्रॉक थी वो। मेघा एकदम गुड़िया जैसी लग रही थी उसको पहनकर। पता नहीं क्यों उछलती हुई मेघा को इतना सुंदर तैयार देखकर बड़ी आंटी के तन बदन में आग लग गई। अपनी 7 बेटियों की जरूरतें पूरी करते करते वो थक जाती थी। परी सी माँ बाप की लाडली मेघा उनको बिल्कुल नहीं भाती थी। कभी कभी मेघा कुछ कुछ बचपन में उठपटांग उनको बोल भी देती थी, तो आंटी मेघा से किसी बात से नाराज हो गई थी। आंटी ने मेघा को पास बुलाया और उसके फ्रॉक के कैनकैन को पकड़कर खींच दिया। पूरा फ्रॉक दूर मुड़ गई। उसके बाद मेघा कभी वो फ्रॉक नहीं पहन पाई। उसको, नन्ही सी बच्ची को, आज तक समझ में नहीं आया कि आंटी ने ऐसा क्यों किया। कई दिन तक वो उस फ्रॉक के लिए रोती रही। आज भी वो फ्रॉक याद है, बाद में बस ऐसे ही अलमारी में टंगी रहती थी। एक और बचपन का साथी याद आता है, एक लड़का था मुकेश, 4 भाइयों में सबसे छोटा। यद्यपि वो सुंदर नहीं था और उसके दांत भी कुछ बाहर की ओर निकले हुए थे, लेकिन बेटी की कमी को उसकी मम्मा उसी में पूरा करती। अक्सर उसकी मम्मी उसको लड़कियों की तरह सजाती। किसी किसी शादी में वो बकायदा लहंगा दुपट्टा पहनकर और नकली जूड़ा लगाकर आता। वो लड़की कम कुछ हिजड़ा ज्यादा लगता था। अक्सर वो किसी किसी बर्थडे पार्टी में खूब मुंह फाड़ फाड़ कर गाना गाता, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। गाना तो बहुत प्यारा है, लेकिन वो गाता कुछ इस तरीके से था कि सबको उसको देख के हंसी आ जाती थी। उस गाने को सुनकर मेघा को उसी का ध्यान आता। बाद में पता चला कि पीएमटी में 3 बार सेलेक्ट ना होने पर उसने आत्महत्या कर ली थी। कितना बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता आजकल कि उसने आत्महत्या ही कर ली थी। घर के सामने एक बहुत बड़ा कच्चा मैदान था, जहां बच्चे दौड़ दौड़ कर खेलते। अक्सर वहां गिट्टी या नरम मुलायम बालू के ढेर पड़े होते। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और बालू से ऊंची चोटी वाला मंदिर बनाते, उसमें एक द्वार बनाते और उसको फूलों से सजाते। फिर उस मंदिर में शाम को आरती होती, उसमें प्रसाद चढ़ता और बस कितने प्यारे दिन थे। वो मंदिर बनाते, उसके चारों ओर बस सब बच्चे बालू पर बैठ जाते और वो उस ठंडी बालू का स्पर्श आज भी, मुलायम बालू का स्पर्श आज भी हाथों पे याद आता है। आज भी मेघा को वो बालू का नरम स्पर्श याद है। और बच्चों के पास छोटी छोटी साइकिलें भी होती थी, तो बच्चे छोटी छोटी 12 इंच की साइकिलों पर इधर से उधर घूमते। कभी कभी बुआ या दादी जी कोई पोस्टकार्ड पोस्ट करने को दे देते, तो कॉलोनी के गेट के बाहर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक लेटर बॉक्स बना था। बच्चे वहां जाते उस लेटर को पोस्ट करने और बच्चों को लगता जैसे जग जीत लिया हो। गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभी घर के आंगन की कच्ची मिट्टी में खुरपी और चिमटे के सहारे कुआं खोदते। 3 फुट गहरे कुएं को खोदकर उसको गीली मिट्टी से खूब लेपते। जब खूब कड़ी धूप में कुआं सूख जाता तो बच्चे उसमें साफ शीतल जल भर देते। पानी बिल्कुल गंदा नहीं होता, एकदम साफ रहता। गुड़िया की छोटी सी बाल्टी और पतली सी सुतली उसमें बांधते बाल्टी में, और उसमें उससे उन लोग पानी निकालने की एक्टिंग करते। बच्चे कुएं में से पानी निकालते। कभी कभी ऐसा भी होता कि बच्चे कुएं की जगह बड़ा सा टैंक खोद देते। एक बार बच्चों ने बड़ा टैंक खोद दिया था, 4x4 फुट का बड़ा सा टैंक, और उसको गीली मिट्टी से लेपा। और जब वो टैंक सूख गया, बिल्कुल एकदम पक्का हो गया सूख के खूब कड़ी धूप में, तब उसमें पानी भर दिया। और सोचिए कितना अच्छा, उसमें स्वच्छ पानी भरा रहता था, बच्चे उसमें खूब खेलते थे। बच्चों ने आंगन में कई पपीते के और अमरूद के पेड़ भी लगाए थे, बच्चे खुद लगाते थे। पपीते के पेड़ में तो फल आने लगे, लेकिन अमरूद के पेड़ में फल ही नहीं आ रहे थे। बच्चे बड़े परेशान, अमरूद में फल नहीं आ रहे। उस दिन घर में पीले पीले अमरूद आए थे, बच्चों ने उन अमरूदों को डोरे से पेड़ की टहनियों में बांध दिया। और जब पापा लंच पर आए तो उछल उछल कर दिखाया, देखिए देखिए पापा हमारे पेड़ में अमरूद लगे हैं, ऐसे बोले होते हैं बच्चे। कभी कभी बच्चे छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और छोटी सी मिट्टी की कढ़ाई तथा चकला बेलन बनाते हैं। उन दिनों बच्चे खूब मिट्टी में खेलते थे। ये आजकल वाला वो नहीं था कि आपको बहुत कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या डस्ट नुकसान करेगी या डस्ट से एलर्जी है। बच्चे खुले मैदानों में और खुली मिट्टी में खेलते थे, तो मिट्टी को गीला करके और उसे छोटे छोटे जैसे प्लास्टर पेरिस से बनाते, ऐसे छोटी सी मिट्टी की कढ़ाई, छोटा सा तवा, चकला बेलन बनाते। धूरी संध्या के समय जब शाम ढल रही होती है, हल्का संधेरा होता है, घर के पेड़ से कच्चे पपीते तोड़ते और उसको बारीक बारीक काट कर उसकी सब्जी बनाते चूल्हा जला के छोटी सी कढ़ाई में। छोटी छोटी सूखी लकड़ियों से उनका चूल्हा जलता। मम्मी के चौके से थोड़ा सा आटा चुरा लाते और छोटी छोटी रोटियां बनती। उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को भूख भी बहुत लगती थी। 4 बच्चे और बस उछलते कूदते सब, चारों पांचों बच्चे जो है खेलते रहते थे और खूब भूख लगती थी सबको। मम्मी की जाली की अलमारी में, जाली की अलमारी में सब नाश्ता रखा रहता था। मम्मी की जाली की अलमारी खोलकर उसमें से मठरी, लड्डू, दालमोठ निकाल निकाल कर खा लेते। जब किसी मेहमान के आने पर मम्मी अलमारी खोलती तो उसमें कुछ भी नाश्ता नहीं मिलता। माँ झीक कर रह जाती। कभी कभी कुछ ना मिलने पर बच्चे दोपहर की बनी रोटी और चीनी बड़े शौक से खाते या ब्रेड पर मलाई और चीनी डालकर खा लेते। बाद में तो बढ़ते बच्चों के लिए मम्मी टिन भर के आटे के बिस्किट और आलू के चिप्स बना कर रखते हैं। दोपहर को 4 बजे कभी मुरमुरे तो कभी चटपटे चिप्स अभी भी याद है। जब बच्चे शाम को खेलकर लौटते तो मम्मी खूब झाग वाला दूध बना कर रखती। 2 ग्लास लेते और अलट पलट के खूब सारे झाग बनता दूध में और वो दूध बच्चों को पीने के लिए दिया जाता। और रात को आलू की रसे वाली सब्जी और गरम गरम रोटी। क्या दिन थे बचपन के। बरसात के दिनों में जब रिमझिम पानी बरसता है मेहंदी वाली हैच पर, उन दिनों घरों के चारों ओर हैच लगी होती थी, मेहंदी की हैच लगा देते थे, जो हाथ में लगाते मेहंदी उसकी हैच लगाते थे। बरसात के दिनों में मेहंदी वाली हैच पर ढेरों ढेरों जुगनू चमकते रहते। कभी कभी बच्चे उन जुगनुओं को बड़ी सी बोतल में बंद कर लेते या मच्छरदानी के अंदर एक जुगनू पकड़ कर छोड़ देते। सुबह जब सोकर उठते तो चमकते जुगनू की जगह काले भूरे कीड़े से दिखाई देते। रात में जुगनू जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, सुबह बहुत ही ऑर्डिनरी सा कीड़ा लगता है। आंगन में 6-7 चारपाइयां बिछा दी जाती और गर्मियों की रात में बच्चे उस पर सोते। आजकल तो आंगन और में सोने का प्रचलन ही खत्म हो गया, आंगन और छत में, लेकिन पहले ऐसे ही सोते थे, आंगन में सोते थे या छतों पे सोते थे गर्मियों में। आंगन में ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता और सफेद चादरों पर एक भी सल नहीं होता, एकदम साफ सुथरी चादरें। सभी बच्चों के ओढ़ने के लिए पीली पीली पतली पतली खादी ग्राम की चादरें थीं, जिन पर सबने अलग अलग रंग के फूल पेंट किए थे, खुद ही फूल पेंट किए थे अलग अलग रंग के। किसी का नीला था, किसी का हरा था, किसी का पीला था। मेघा की चादर पे हरा फूल बना था। रात में दादी और माँ कभी हीरामन तोता और कभी सूसा मानसगंध की कहानी सुनाती। उस समय कोई रेडियो वो तो होता नहीं था, टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं था, तो बस दादी और नानी और माँ अपने पास घुसा लेते थे और बच्चों को रात में कहानियाँ सुनाते थे और बस वही कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे सो जाते थे। कैसा प्यारा था बचपन। कई बार राक्षसों की कहानियाँ होती, राजकुमारों की कहानियाँ होती, राजकुमारी की कहानियाँ होती और बच्चे कई बार डरते भी जाते और कहानियाँ सुनते भी जाते। रात में मेघा सफ़ेद रंग की शमीज और लेस लगी टैंटी पहन कर सोती। गोल गोल घूमता टेबल फैन रात भर सरगम सी गाता रहता। बच्चे टेबल फैन के सामने बैठ जाते और सरगम गाते। रात में घूमते नीम के पेड़ को देखकर कभी मेघा को डर लगता तो कभी अंधेरे उजाले में ऐसा लगता कि कोई चोर दीवार से झांक रहा हो। इस बीच घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला तो जहां से मिट्टी निकाली गई थी वहां एक करीब 6x6 फुट का गड्ढा बन गया। बच्चों ने पापा से जिद की और उन्होंने उसे पक्का टैंक बनवा दिया और बीच में फुवारा भी लगवा दिया। बच्चों के ऐश हो गए। गर्मी भर बच्चे उसमें कूद कूद कर नहाते और उस छोटे से टैंक में स्विमिंग करते जो एक हाथ मारते ही पूरा हो जाता था। होली में उसमें रंग घोल दिया जाता और कॉलोनी के बच्चों को उसमें ढकेल दिया जाता। सारे बच्चे उसे कूदते थे। बाद में मम्मी ने उसमें गुलाबी कमल के फूल लगवा दिए और छोटी छोटी मछलियाँ डलवा दी थी। चलिए तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। और बचपन की यादें तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं। तो बस इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर और मेरी इस चैनल मालती के फूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली बार मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था बचपन। और वो बस बचपन की खूब प्यारी प्यारी सी यादें हैं जिनको जोड़ के, जिनको याद करके मैंने लिखा और वो एक कहानी के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे एक कॉलोनी में रहते थे। उसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बने हुए थे, डबल स्टोरी घर थे, उसमें फ्लैट्स बने हुए थे बहुत सारे। और उसमें जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे उनका एक बड़ा सा बैंगलो था पीले रंग का। और उसमें सामने गार्डन था जिसमें सारे बच्चे शाम को इकट्ठे होकर खेलते थे। कॉलोनी के जितने भी ऑफिसर्स थे सब लगभग एक एज के थे, इसलिए उनके बच्चे भी बराबर थे। और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे नर्सरी के एजी से लेके 5th, 6th, 7th, 8th तक। बड़े बच्चे कम थे, 11वीं 12वीं के एक दो बच्चे थे और वो भी लड़कियां थी तो वो लोग तो शांत थी। बाकी बच्चे दिन भर खेलते थे। तो बस वही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि बच्चे कैसे खेलते थे, फिर लौट के आते थे तो कैसे उनको झाग वाला दूध मिलता था बना हुआ, फिर रात को गरम गरम खाना खाते थे बच्चे। और गर्मियों में आंगन में और छत पे छिड़काव किया जाता था, वहाँ पे बेड खाटे लगाई जाती थी, उस पर बिस्तर बिछाए जाते थे और उसके बाद खुले आसमान के नीचे गर्मियों में बच्चे सोते थे। तो बस अब उसी के आगे की कहानी जिसका नाम है बचपन। तितली उड़ी, उड़ी जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। तितली कहे मैं चली आकाश। तितली उड़ी, उड़ी जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। तितली कहे मैं चली आकाश। तो बस ऐसे तितली के समान लहराता हुआ बचपन था मेघा का। अक्सर बड़े बड़े लॉन्स थे, होते थे सामने, उसमें बहुत से फूल खिले रहते थे और उनमें उनके ऊपर तितलियाँ भंवरे मंडराते रहते थे। तो बच्चे उन पीली और भूरी तितलियों के पीछे दौड़ते थे और उनको पकड़ते थे। तो बस इस गाने को सुन के वही तितलियाँ याद आ जाती हैं अभी भी और ऐसा लगता है जैसे फिर से हम उसी खुली खुली धूप में पहुँच गए हैं, बचपन के उसी प्रांगण में, उसी आंगन में वापस पहुँच गए हैं। तो मेघा छोटी थी तो उसको गुड़ियों का भी बड़ा शौक था, सभी लड़कियों को होता है, उसको भी था। एक बार बच्चों ने गुड़िया की शादी भी की। एक बार बच्चों ने गुड़िया की शादी भी की थी। मेघा का गुड्डा था और उसकी सहेली चारू की गुड़िया। चारू उसकी बहुत ही प्यारी सहेली थी जो वहीं कॉलोनी में रहती थी। गुड्डे की बारात देखने लायक थी, बच्चों की छोटी कार में गुड्डा सवार था और आगे पीछे लड़के बैंड बजाते हुए जा रहे थे। गुड्डे की बारात देखने लायक थी, बच्चों की छोटी लाल कार में गुड्डा सवार था और आगे पीछे लड़के बैंड बजाते हुए जा रहे थे। गुड़िया की मम्मी ने कॉलोनी भर के बच्चों को खाना खिलाया। पहले शादी हुई और फिर कॉलोनी भर के बच्चों ने खाना खाया। अगले दिन मेघा के घर में गुड्डे का रिसेप्शन था। गुड़िया की मम्मी ने कहलवाया, बच्चों को खाना मत खिलाइएगा, सिर्फ नाश्ता करा दीजिएगा, नहीं तो आप खाना बनाते बनाते थक जाएंगे। लेकिन मम्मी को लगा, अरे बच्चे कितना खाएंगे, दो दो पूरी खाना ही खिला देंगे। लेकिन जब कॉलोनी भर के बच्चों ने खाना खाना शुरू किया तो बस मम्मी की हालत खराब। मम्मी आटा मांडती जाती, पूरियां बनाती जाती, पूरियां खत्म हो गई फिर बनाई, फिर आलू उबाले। उस दिन बुरी तरीके से मम्मी और उनके साथ में काम करने वाला नौकर दोनों बहुत थक गए थे। मेघा कुछ कुछ बुद्धू सी भी थी, कई बार उसको समझ में नहीं आता था क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उस बार उसका 7वां जन्मदिन था, शायद घर में कुछ परेशानी थी। मम्मी ने सोचा इस बार बर्थडे नहीं मनाएंगे, मेघा को दो नई फ्रॉक दिलवाई गई, एक सैप ग्रीन स्ट्रेट फ्रॉक और एक पीले रंग की जिसमें बड़े बड़े फूल बने हुए थे। किंतु मेघा शाम को 6 बजे जाकर सारे घरों में बुलाई, आज मेरा बर्थडे है, सब लोग घर आना। अब सारे कॉलोनी भर के बच्चे 7 बजे बर्थडे मनाने आ गए और घर में कोई तैयारी नहीं। अब मम्मी परेशान, उन्होंने ढेर सारे आलू बॉईल किए, उनके ब्रेड रोल बनाए और हरी मटर छौंकी। जो कुछ घर में था वही बच्चों को बना के खिलाया। तो ऐसी बुद्धू थी मेघा। एक बार मेघा अपनी बुआ और दादी के साथ मेले में गई थी, उन दिनों मेले खूब लगते थे। उस मेले में एक बहुत ऊंचा वाला झूला था। ओह, मेघा दादी और बुआ के साथ झूले में बैठ गई और जैसे ही झूला चलना शुरू हुआ तो मेघा की तो हालत खराब, और जब झूला टॉप पर पहुंचा तो नीचे खड़े मम्मी पापा छोटे छोटे लग रहे थे, जैसे कि कोई खिलौने हो। जैसे ही झूले ने स्पीड पकड़ी मेघा घबरा गई और चीख चीख कर रोने लगी, झूला रोको, झूला रोको, झूला रोको, हमको डर लग रहा है। लेकिन बिजली से चलने वाला झूला कभी रुकता है क्या? बाबा रे, वो डर ऐसा मेघा के मन में बैठा कि उसके बाद फिर वो कभी किसी ऊंचे झूले पर नहीं बैठी। मेघा मम्मी पापा की बड़ी लाडली थी, तो जब कभी मेघा बीमार पड़ती तो मम्मी उसको रिक्शा में बैठाकर डॉक्टर के क्लिनिक ले जाती। उसे दवा के साथ हर बार एक नई गुड़िया भी मिलती। मेघा गुड़िया के लिए छोटे छोटे कपड़े और स्वेटर बनाती, छोटी छोटी कॉपियाँ बनाती सिलकर और गुड़ियों को पढ़ाती। मुझे लगता है सारे बच्चे ये करते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। एक बार पापा ने उसके लिए गुड़िया का घर बनवाया था, प्रॉपर सीमेंट और कंक्रीट का। उसमें ढेर सारे कमरे थे और बड़े भैया की कार, छोटी सी कार उसके गैरेज में रखी जाती थी। उस घर के गैरेज में कार रखते थे छोटी सी। मेघा के पास गुड़िया का छोटा सा सोफा सेट था, पलंग था, ड्रेसिंग टेबल थी और फ्रिज था, छोटे छोटे गुड़िया के बर्तन और अलमारी थी। मुझे लगता सभी लड़कियां जो है अपने चाइल्डहुड में जो है वो गुड़ियों के साथ खेलती हैं और अपने भावी घर का निर्माण भी और अपने भावी बच्चों को पालने की शिक्षा भी वो उन्हीं गुड़ियों के खेल में ही पा लेती हैं। मेघा की मम्मी उसको बड़े शौक से पालती थी। मेघा की मम्मी उसको सैलून लेकर जाती, ब्यूटी पार्लर, उससे बहुत कम लड़कियां जाती थी ब्यूटी पार्लर, और उसके बालों को बॉब कट कटवा देती, सामने से साधना कटे हुए बाल और छोटे छोटे बॉब कट कटे बाल। तरह तरह की फ्रॉक्स में मेघा खुद गुड़िया जैसी लगती। रात में जब बाहर आंगन में सोते खुले आकाश के नीचे, तो रात में मेघा तारों भरे आकाश को देखती और बादलों के बीच में से ऐसा लगता कि कोई चांदी से परी, चांदी की परी, चांदी के पंखों के साथ नीचे उतर रही हो। मेघा आसमान में ढूंढती रहती बादलों में और ऐसा लगता जैसे बहुत सी परियां ऊपर आसमान में से नीचे उतर रही हूँ। इसको मेघा को स्विमिंग का भी बहुत शौक था, तो उनके स्कूल में एक स्विमिंग पूल था जिसमें स्विमिंग सीखी थी। तो एक बार जो वहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन हुआ तो मेघा ने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया। वो पानी में कूदने से डर रही थी, तभी उसके बड़े भैया बोले, जो 2 साल बड़े थे, उसके बड़े भैया 2 बार बोले, कूदो कूदो। और जब मेघा नहीं कूदी डर के मारे तो पीछे से मेघा को उन्होंने धक्का दे दिया और मेघा एक बार में आधा स्विमिंग पूल क्रॉस कर गई और मेघा फर्स्ट आ गई। तो ऐसा होता है बचपन, जब सारे चचेरे ममेरे भाई बहन इकट्ठे होते तो बच्चे मिलकर खूब गाने गाते। कहीं घूमने जाते तो जब तक कार या जीप चलती रहती बच्चे गाने ही गाते रहते। और अब एक मास्टर साहब की कहानी। बच्चों को एक मास्टर साहब पढ़ाने आते थे। होमवर्क ना करने पर बच्चों के कान बड़े कस के मरोड़ देते। बच्चे डर के मारे मम्मी पापा से कुछ भी ना बोल पाते। एक बार नानी जी आई तो मेघा के बीच वाले भाई ने नानी जी से उनकी शिकायत की, बोले मम्मी पापा तो सुनते नहीं है, नानी जी आप देखिए कि ये जो है मास्टर साहब हमारे कितने जोर से कान खींचते हैं कि देखिए पूरे लाल हो जाते हैं। नानी जी को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने मास्टर साहब को डांट लगाई। तो बच्चे खुश हो गए कि कोई तो है जो मास्टर साहब को भी डांट सकता है। चारों की वो दोपहरें जब बच्चे दिन दिन भर बैठकर गणित के सवाल हल करते थे और चारों की वो रातें जब पापा रजाई में बैठकर पढ़ाते थे और बच्चे काजू मूंगफली और बादाम खाते थे। कभी बच्चे कुछ कुछ बदमाशियां भी करते थे और कभी जो कुछ सर्वेंट्स वगैरह रहते हैं उनको देख के भी बच्चे उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो कभी बच्चे बड़ों की नकल करते और जीने के नीचे वाले हिस्से में छुपकर पेपर के सिगरेट बनाते और उसमें पीछे आग लगा के और वो सिगरेट पीते और फिर बाद में खांसते रहते। एक बार बच्चों ने देखा सब्जी की क्यारियों में आंगन में एक बूढ़ा तोता घूम रहा था। बच्चों ने, तोता बूढ़ा था तो चल नहीं पा रहा था, तो बच्चों ने उस तोते को पकड़ लिया और एक अंगीठी, पहले पुराने ज़माने में अंगीठी होती थी जिसमें बीच में ऐसे लोहे की छड़े होती थी, तो वो पिंजड़े ऐसी होती थी, तो बच्चों ने उस अंगीठी के अंदर उस तोते को छुपा के रख दिया। फिर नौकर को दौड़ाया गया कि पिंजड़ा लेकर आओ, लेकिन जब तक पिंजड़ा आया तब तक पापा लंच पे आ गए। पापा ने देखा बच्चों ने बेचारे तोते को, वो भी बूढ़ा, उसको बंद करके रखा है, तो पापा ने उस तोते को छुड़ा दिया और बोला, नहीं उसको जाने दो, अगर तुम्हें कोई पिंजड़े में बंद करके रख दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बच्चे दुखी तो हुए लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, पापा की बात तो माननी पड़ेगी, तो तोते को छोड़ दिया गया। वो पिंजरा कई सालों तक घर के स्टोर में पड़ा रहा। फिर बाद में उस समय ना इंटरनेट था ना टीवी था, सिर्फ रेडियो होता था घर में, तो या तो रेडियो में गाने बजते थे या फिर मैगजीन्स आती थी और छोटी छोटी नॉवेल्स आती थी जो बच्चे पढ़ते थे। तो गर्मियों की छुट्टी पर बच्चे बाल पॉकेट बुक, नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते, दिवाली पर ताश खेलते और होली पर खूब पिचकारियों से खेलते, रंगों से खेलते। तो बड़ा लाइवली सा माहौल था कॉलोनी का। ये मेघा की लाइफ का बड़ा ही एक दुखद प्रसंग है। एक बार मेघा के छोटे भाई के हाथ से स्कूल की लाइब्रेरी की बुक खो गई। अभी भी याद है उस लाइब्रेरी की बुक के ऊपर एक हिरन बना हुआ था, किसी हिरन की कहानी थी। मेघा की मम्मी ने उसे 5 रुपये दिए फाइन जमा करने के लिए। उसे 5 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, हो सकता आज के 50 रुपये या 500 रुपये, पता नहीं पता नहीं वो रुपये किसी ने चुरा लिए या गिर गए। मेघा फाइन जमा नहीं कर पाई। तब उसके छोटे भाई को लाइब्रेरियन, जो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी लेडी थी, चश्मा लगाती थी, लाइब्रेरियन ने खड़ी स्केल से बहुत मारा था। और मेघा जो कि अबोध भी थी और कमज़ोर भी थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, वो क्लास में बैठकर छुप छुप कर रोती हुई उसे देखती रही थी। लंबे समय तक भाई के चीखने की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रही थी और आज तक वो खुद को माफ़ नहीं कर पाई कि एक बार जाके कम से कम उन मैडम को बोल तो सकती थी कि हमारा नोट खो गया, लेकिन बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। आज तक मेघा के मन में उस घटना का गहरा प्रभाव है। उस समय बच्चों को घर में काफ़ी पढ़ाते थे, तो जो मेघा के पापा जी थे, मतलब फादर के जो पिताजी थे, पापा के पापा वो मैथ्स पढ़ाते थे, तो सब बच्चों को पहाड़े या टेबल्स जो हैं वो बाबा जी याद कराते थे। वो कहते तुम लोग को पहाड़े इतने पक्के याद होने चाहिए कि यदि रात को 12 बजे उठाकर भी कोई पहाड़ा पूछे तो तुमको याद आ जाना चाहिए। उन्हीं के समय का हमें याद है, वो हमें सिखाते थे 15, 30, 45 चक्को, 60, 50, 75 या 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, जो अभी तक हमको सब याद है। एक बार बहुत शैतानी करने पर बाबा जी ने सब बच्चों को सजा दी एक पैर पर खड़े होने की और खुद जाकर सो गए। मेघा के बड़े भैया जिनके पैर में फ्रैक्चर था, वो भी 2 घंटे तक एक पैर पर खड़े रहे। आज भी याद करके रूह कांप जाती है, लेकिन बच्चे इतने ओबीडिएंट थे कि वो बाबा जी तो जाके सो गए लेकिन वो जो है एक पैर पर खड़े रहे उसके बाद भी। चलिए, ये कुछ कठिन घटनाएं थी, अब आगे की प्यारी प्यारी घटना। एक बार मम्मी ने 6 कटोरी 6 ग्लास वाला पिकनिक सेट खरीदा, लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर का। उस बार जब बच्चे मामा जी के घर टेंट्स में गए तो पूरा टेंट का कूपा बुक किया गया था, 6 पूरी 6 बर्थ अपनी थी। रात के खाने में जब मम्मी ने छोटी छोटी कटोरियों में आलू के रसे वाली सब्जी और पूरी दी तो बच्चों को आनंद आ गया। देहरादून के रास्ते में दोनों ओर लीची के पेड़ लगे हुए थे और उस पर लाल लाल लीचियों के गुच्छे झूल रहे थे। बच्चे उनको मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए थे। हर घर में, देहरादून में हर घर में आड़ू और आलूचे के पेड़ लगे थे, लाल लाल आड़ू और आलूचे। उस साल बच्चों ने पहली बार मसूरी में सॉफ्टी आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम के साथ कोन भी खाना होता है ये ज़रा मुश्किल से समझ में आया था, जब दूसरे लोगों को देखा खाते हुए तब देखा, तब खाया था कोन। हरिद्वार में बच्चे गंगा किनारे की धर्मशाला में रुके थे। गंगा की वेगवती धारा, रात भर वहाँ गंगा के पानी का शोर गूंजता रहा था। कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में बच्चे मामा जी के पास भिलाई जाते। वहाँ मामा जी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे और कभी कभी वो बच्चों को स्टील प्लांट दिखाने ले जाते। एक बार मेघा अपने नए नए सफ़ेद जूते पहनकर स्टील प्लांट देखने चली गई। अच्छा, जब तक लौट कर आए काले धुएं से दोनों सफ़ेद जूते पूरे काले हो चुके थे, इतना अफसोस हुआ, खराबी हो गए जूते। स्टील प्लांट में एक जगह जब मालगाड़ी का कोयले से भरा वैगन आकर रुकता तो उसके नीचे स्थित पूरा का पूरा फर्श ही पलट जाता। ऐसा मेघा को लगता था कि पूरा फर्श पलट जाता है। बच्चों का दिल दहल जाता उसको देख के। गरम गरम लोहा लाल लावे के रूप में बहता, कभी लोहे की गरम रॉड्स तो कभी लाल गरम सिल, बच्चे चमत्कृत हो जाते हैं। भिलाई में बच्चे खुले पास के मैदान में खेलने निकल जाते हैं और वहाँ से लाल लाल बील बहुटियाँ शीशी में भर के ले आते हैं। छोटा सा कीड़ा होता है लाल रंग का, एकदम रेशमी उसके ऊपर लाल रंग का कीड़ा होता है। कभी बच्चे एक्वेरियम में तैरती मछलियों को देखते रहते, रंग बिरंगी नारंगी और काली मछलियाँ, मछलियाँ ही मछलियाँ, मछलियाँ एक्वेरियम में ऊपर नीचे होती रहती। एक बार एक नारंगी मछली मर गई, बच्चों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उस मछली को उसमें गाड़ दिया और उसकी छोटी सी कब्र बनाकर उस पर फूल भी चढ़ाए। मामा जी के घर में ही बच्चों ने पेड़ों पर चढ़ना सीखा, कभी आम के छोटे से पेड़ पर चढ़ते तो कभी नीम के। एक बार पता नहीं क्यों शहतूत के पेड़ पर चढ़ गए बच्चे। चढ़ते चढ़ते मेघा ऊपर टॉप तक पहुंच गई। ऊपर तो पहुंच गई लेकिन नीचे कैसे उतरे समझ में नहीं आ रहा था। लगा शायद ऊपर से नीचे गिरकर मर ही जाएगी। मेघा ऊपर बैठकर रोने लगी। फिर पता नहीं कैसे उसके बड़े भाई ने एक एक डाल उतार उतार कर उसको पेड़ के नीचे उतारा था। शाम को बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते और टेबल बजा बजा कर मामा मामी को गाने सुनाते। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं स्मिता माथुर, मेरी इस चैनल माती के फूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ये कहानी डिस्कस कर रहे थे, सुन रहे थे, जिसका नाम था बचपन। सभी का बचपन बहुत प्यारा होता है, हंसता खेलता गाता बचपन, कभी उसमें भी छोटे छोटे खुशियाँ होती हैं, कभी कभी छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, छोटे छोटे कुछ दुख भी होते हैं, लेकिन फिर भी सभी को अपना बचपन बहुत याद आता है। तो बस ऐसे ही मुझे भी अपना बचपन बहुत याद आता था और इसलिए मैंने उसको एक दिन ऐसा लगा कि उस बचपन को किससे सुनाऊं। तो मैंने अपनी कॉपी उठाई, अपना पेन उठाया और उस बचपन की प्यारी प्यारी सब यादें जो थी उनको कागज़ के पन्नों पर उतार दिया। तो बस मेरी उसी तूलिका से रंगा हुआ ये चित्र है जिसका नाम है बचपन। अब आगे इस बीच में मेघा की दादी जी का स्वर्गवास हो गया। जिस दिन उनका हवन था उस दिन सब बच्चे बैठे हुए थे और जो आग की लपटे थी हवन की उनको देख रहे थे, और जब हवन खत्म हुआ तो सब बच्चों ने कुछ कुछ बोलना शुरू किया। किसी ने बोला कि हमने दादी जी को उन आग की लपटों में देखा है, किसी ने बोला हमने दादी जी को आंगन में देखा है, किसी ने बोला हमने दादी जी को उनके कमरे में देखा है। तो सब बच्चे कुछ कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो मेघा को तो सचमुच में एक्चुअली दादी जी दिखाई दी नहीं थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं बोलूँगी मुझे नहीं दिखाई दी दादी जी तो सब बोलेंगे अरे हमको तो दिखाई दी, तुमको नहीं दिखाई दी। तो बस मेघा ने झूठ बोल दिया। क्या बोला? हमको भी दादी जी दिखाई दी, नीम के पेड़ के ऊपर हमने दादी जी को देखा है। लेकिन एक्चुअली मेघा को पता था कि उसने झूठ बोला है, और बच्चे डरते हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो बड़े लोग नाराज़ होंगे। तो उसको लगा दादी जी नाराज़ हो गई हमसे। तो एक साल तक मेघा जो है वो डरती रही उसको ऐसा लगता था जैसे दादी जी जो है वो लाल लाल आंखें करके उसको डरा रही हो, अच्छा तुमने झूठ बोला। जबकि अब लगता है कि ये बहुत ही छोटी सी घटना थी, लेकिन उस समय बहुत इस चीज़ से मेघा डर गई थी कि हमने झूठ क्यों बोला, और कभी किसी को ये बता नहीं पाई कि हमने झूठ बोला था कि हमने दादी जी दिखाई दी थी। बस ऐसी ही छोटी छोटी कल्पनाओं में बचपन कटता है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में पापा सब बच्चों को दिल्ली घुमाने ले गए। साथ में बहुत सारे बच्चे थे, चाचा जी के, ताऊ जी के, मामा मौसी सबके बच्चे। पापा को घुमाने बड़ा मजा आता था, तो उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और दिल्ली घुमाने चले। तो उस समय तो बसेस में इधर से उधर जाते थे, तब कैब्स नहीं होती थी और पर्सनल कार में इतनी जगह नहीं होती, तो सिटी बस से जाना होता था। तो जब बस में इतने सारे बच्चों को लेके बस में चढ़ने लगे, तो पूरे की पूरी जो है उस हम लोग कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे। अब बच्चे चढ़ते जा रहे हो, बस का कंडक्टर जो है उसने देखा और बस तुरंत चल देती है 2 मिनट में। तो उसने ड्राइवर से कहा, अरे अरे रुको रुको, क्रिकेट टीम चढ़ रही है। और हम लोग को बड़ी शर्म आई, उन्होंने कहा अरे कैसे बोल रहे हैं। फिर सब लोग जो है वो उनसे पूछे, हमारी जी जी साथ में थी सबसे बड़ी, तो उनसे पूछ रहे कि अरे ये सब तुम्हारे सगे भाई बहन है। तो जी जी बहुत शर्मा के बोल रही, नहीं नहीं हमारे कोई चाचा जी के बच्चे हैं, कोई मौसी के बच्चे हैं, कोई मामा के बच्चे हैं, सगे भाई बहन नहीं है सब, इतने सारे भाई बहन। छोटी सी घटना लेकिन मजेदार सी है कि सब ने कंडक्टर बोला था क्रिकेट टीम चल रही है। बड़े भैया वैसे तो बहुत ही डिसिप्लिन थे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभी छोटे बच्चों पे अफेक्ट आ जाता है जो सर्वेंट्स होते हैं उनका। तो एक बार बड़े भैया जब छठवीं में थे, तो पापा ने उनको घर के नौकरों के साथ बैठकर ताश खेलते देखा। धूरी संध्या का समय था और बड़े भैया जो थे वो सर्वेंट्स के साथ बैठ के ताश खेलते थे। पापा उनसे तो कुछ बोला नहीं, पापा ने बस उनको गोद में उठा कर लाए और जोर से पलंग पर पटक दिया। सारे बच्चे डर गए, भैया भी डर गए और सारे बच्चे भी डर गए। वो दिन और आज का दिन बड़े भैया का ध्यान किन्हीं गलत चीज़ों पर नहीं गया। कितना अच्छा ट्रीटमेंट था, एक शॉक ट्रीटमेंट था कि बच्चे को बस उठा के लाए और पलंग पे पटक दिया, ना मारा ना पीटा ना डांटा, कुछ नहीं किया। उस साल जाड़ों में उस समय मेघा 4th में थी, तो मेघा जाड़ों में छोटी छोटी स्ट्रेट फ्रॉक्स पहन के घूमती थी। छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनती तो पैर पूरे खुले रहते थे। तो जो बाबा जी थे उनके बच्चों के बाबा जी, उनको बड़ा अजीब लगता था कि ये लड़की कैसे घूम रही है। तो बोले ये कैसे तुम जो खुली खुली टांगे लेके घूमती रहती हो, तुमको शर्म नहीं आती इतने बड़े हो गए हो। मतलब बच्चियाँ तो छोटी सी हो तो भी हमेशा उनसे यही कहा जाता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो। तो मेघा रोने लगी, मेघा ने जाके पापा को बताया, हमको ऐसे डांट पड़ी बाबा जी से, बाबा जी ने हमसे बोला कि तुम ऐसे खुली खुली टांगे लेके घूमती हो। पापा बोले कोई बात नहीं। पापा ने उस रात हमको साइकिल में बिठाया, मेघा को बिठाया साइकिल पे। वैसे पापा कार से जाते थे सब जगह, लेकिन उस दिन साइकिल में लेके गए उसको। साइकिल में आगे बिठाया और मार्केट लेके गए, और पापा ने 6 पजामों का कपड़ा इकट्ठे दिला दिया। हर रंग के पजामे, मतलब नीला पीला लाल हरा, हर रंग के पजामों के कपड़े दिलवा दिए। और फिर लौट के आए और फिर मम्मी ने उसके चूड़ीदार पजामे सिले, 6 चूड़ीदार पजामे। और मम्मी को सिलना नहीं आता था, तो एक आंटी थी वहाँ पड़ोस में जो पंजाबी थी, जो कि चूड़ीदार सिलना जिनको आता था, उनसे सीख के मम्मी ने चूड़ीदार पजामे सिले। अब मेघा छोटी सी फ्रॉक पहनती थी और उसके नीचे चूड़ीदार पजामा। तो बस बाबा जी खुश हो गए कि चलो बच्ची ने हमारा कहना मान लिया। एक और बहुत ही प्यारी सी घटना है। उस समय मेघा 3री में और उसका छोटा भाई 1ली में था। तब मेघा 3री में और उसका छोटा भाई 1ली में था। उस दिन छुट्टी के बाद उन्हें कोई लेने नहीं आया, पता नहीं उस दिन उनका वो सर्वेंट छुट्टी पे था जो लेने आता था या क्या कारण था मालूम नहीं, बीमार हो गया था तो कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। दोनों बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े हुए थे और रो रहे थे, हमें कोई लेने नहीं आया, हम क्या करें, छोटे छोटे से बच्चे। स्कूल की आया कंपाउंड में बने उनके घर में ले गई, आया ने देखा बच्चे रो रहे हैं तो अपने घर में ले गई। और वहाँ हमें बहुत अच्छे से याद है, आया ने गरम गरम दाल चावल बनाए थे और बच्चों को वहीं ज़मीन पर बिठा के और गरम गरम दाल चावल खिलाए। आज तक वो दाल चावल याद है, क्योंकि कितने सोचिए आया वो कितनी गरीब रही होगी लेकिन उसका दिल कितना बड़ा था कि उसने हमको जो है वो कि बच्चे भूखे होंगे तो गरम दाल चावल खिलाए। आज भी हल्की सी उस आया की छवि जो है वो मन में अंकित है। करीब 3 बजे के आसपास देखा तो पापा साइकिल पे बच्चों को लेने आए थे, तब हम लोग उस दिन पापा के साथ साइकिल पे घर गए। मेघा जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की प्रिंसिपल को बच्चे बड़ी आंटी बोलते थे, बच्चे उनसे बहुत डरते थे। वो बहुत तेज परफ्यूम लगाती थी और उनके कटे हुए घुंघराले बाल थे। उनके स्कूल में प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ से बच्चों को कॉपियाँ खरीदनी होती थी जिसके हरे कवर पर हाथी बना रहता था। अक्सर मेघा आंगन के अंधेरे कोने में जाकर कॉपी के पीछे के पन्ने फाड़ देती जिससे नई कॉपी जल्दी मिले। कितनी बेकूफ़ी की बात थी लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं नई कॉपी के लिए। बाद में एक बार वही बड़ी आंटी जिनसे मेघा बहुत डरती थी, जब वो 10th में दूसरे स्कूल में गई वहाँ पे एक बार वो आई थी और फिर उसने देखा तो बहुत छोटी सी, बहुत वेरी शॉर्ट हाइटेड, हार्डली 4 feet 8 inches और सो, इतनी छोटी सी, कम हाइट की थी और बहुत ही ऑर्डिनरी सी पर्सनैलिटी की थी। और उसके बाद उसका, उनको देखने के बाद उसका डर खत्म हुआ, लेकिन उस समय तो बच्चे बहुत डरते थे बड़ी आंटी से। मेघा ने अपने बचपन में जो है वो युद्ध भी देखे थे, मतलब 1971 का युद्ध भी उसके सामने हुआ था। और एक और खूब प्यारी सी याद है 1969 की। 1969 की बात है, गांधी जी की 100वीं जयंती थी। उस साल उनके शहर में कंसेशनल रेट पर फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किया गया था। तो फ्लाइट्स बहुत बड़ी बात होती थी, नॉर्मली आम आदमी फ्लाइट्स में नहीं बैठ पाते थे, बहुत ज़्यादा टिकट होते थे, इतनी फ्लाइट्स भी नहीं होती थी। बड़े दिल वाले मम्मी पापा ने मेघा के बड़े भाई और मेघा के टिकट लिए, दोनों बच्चों के नए कपड़े बने फ्लाइट में बैठने के लिए। मेघा के बड़े भाई के लिए ब्लू स्ट्राइप वाली शर्ट और मेघा के लिए ब्लू स्टेट फ्रॉक जिस पर गुब्बारे बने थे खरीदी गई। उस 2-सीटर एरोप्लेन में एक बार में 2 ही लोग बैठ सकते थे, येलो कलर का प्लेन था। सभी बाकी जितने भी लोग फ्लाइट में उड़े थे सब बड़े बड़े लोग गए थे, लेकिन सिर्फ ये ही दोनों बच्चे थे जो एरोप्लेन में गए थे। जब एरोप्लेन आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो नीचे गंगा नदी पतली रेत की लाइन जैसी और टैक्सी छोटी छोटी चींटियों जैसी लग रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ घास जैसे और घर खिलौनों जैसे लग रहे थे। उसके बाद मेघा ने बहुत सी हवाई यात्राएं कर ली लेकिन वैसा रोमांच कभी अनुभव नहीं हुआ। बहुत ही रोमांचकारी एक्सपीरियंस था छोटे से प्लेन में आसमान में उड़ के जाना, और जबकि बच्चे खुद भी बहुत छोटे छोटे थे। मेघा सबसे पहले क्लास 3rd में फर्स्ट आई थी। फर्स्ट आने पर उसे 6 रुमाल, नए रुमाल और एक एम्ब्रॉयडरी सेट इनाम में मिला था। पापा मम्मी बहुत खुश थे। मेघा के बड़े और छोटे भाई भी क्लास में फर्स्ट आते थे, सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आते थे। जब सारे बच्चे अपने अपने रिजल्ट लेकर उछलते हुए घर पहुंचते तो सारा घर खुशियों से भर जाता। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से पढ़ने के लिए कोई नहीं कहता, साल में पढ़ो, छुट्टियों में टोटल मस्ती। बस नॉवेल पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो और खेलो। तो बच्चों के लिए छोटी छोटी बाल पॉकेट बुक आती थी, वो पढ़ते थे। और अभी भी याद है उनमें एक गुलीवर की यात्रा ऐसे करके एक बुक थी, और एक रॉबिन्सन क्रूसो की बुक थी, और एक मूंगों के द्वीप करके एक बुक थी। तो ये तीनों किताब जो थी, किताबें नॉवेल्स जो थी, वो यात्रा वृत्तांत में थी। तो वो इतनी अच्छी लगती थी, और बच्चे तो यही समझते थे कि ये सब कुछ असल में ही हुआ होगा, कि सच में गुलीवर को ही होगा और किसी द्वीप में गया होगा जहाँ पे उसको 6-6 इंच के आदमी मिले होंगे। तो बच्चे स्केल लेके देखते, 6 इंच की स्केल लेके, कि अरे इतने छोटे आदमी, लेकिन वो सब कुछ एकदम सच ही लगता था। बस नॉवेल पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो और खेलो, लेकिन कोई भी काम मम्मी पापा से छिपा कर नहीं। बच्चे जब स्कूल से लौटते तो मम्मी खिड़की पर केले टांग कर रखती, बच्चे उसे उछल उछल कर तोड़ तोड़ कर खाते। चौथी के बाद बच्चों को और बेहतर स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता। जब मेघा को नए स्कूल में शिफ्ट किया गया तो वो पहले दिन स्कूल में स्थित स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गई। स्विमिंग का बड़ा शौक था उसको। जब वो क्लास में भीगे बाल लेकर पहुंची तो सब बच्चे उस पर हंसने लगे। क्लास की लड़कियां उसको अपने साथ लेकर नीचे हॉल में टिफिन खाने ले गईं। उनका व्यवहार उसके प्रति पहले दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनमें ही एक लड़की थी, नीलिमा। उसने और लड़कियों से कहा, पता है, देखो देखो, मेघा के सिर में जुए हैं। ओह, मेघा के सिर में जुए हैं, इससे बात नहीं करो। हो सकता है मेघा के सिर में जुए हो, लेकिन नीलिमा ने इतना ज्यादा और ऐसा बोला कि ओहो, पहले दिन के बाद से सब लड़कियों ने उसका बायकॉट कर दिया, कोई उससे बात नहीं करता था। मेघा रोती हुई घर पहुंची और मम्मी को सब बातें बताई। मम्मी ने उसी दिन ले जाकर उसके बाल बॉब कट कटवा दिए, लंबे लंबे बाल थे उसके, कितने लंबे बालों को कैसे साफ करेंगे, तो छोटे छोटे कटवा दिए। मेघा बड़ी दुखी हुई। नए स्कूल में एडजस्ट करने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी, और ऊपर से सब बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे। उसमें एक लड़का था संदीप, वो मेघा को बहुत चिढ़ाता था। स्विमिंग पूल में जब मेघा स्विमिंग करती, उसके पैर पकड़ कर खींच देता, या कंधे से दबा देता, या सिर से दबा देता, और दबा के उसको पानी में डुबो देता। मेघा घबरा जाती। उस समय मेघा थोड़ा सा तुतला के भी बोलती थी, तो अड़ा को राह बोलते थे। मेघा कई बार अड़ा को राह बोलती थी, तो संदीप उससे कहता, मेघा बोलो, घोड़े सड़क पर फड़क फड़क दौड़ रहे हैं। और मेघा बोलती, घोड़े सड़क पर फड़क फड़क दौड़ रहे हैं। और जब मेघा अड़ा को राह बोलती तो वो खूब हंसता। किसी आई से मेघा रोनी रोनी हो जाती। उस साल गणित के पहले टेस्ट में मेघा को 0 नंबर मिले थे। एक तो नया स्कूल, ऊपर से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, सब बच्चे चिढ़ाते भी थे, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैथ्स में 0 नंबर मिले। डर के मारे उसने रिजल्ट को पापा को नहीं दिखाया था, और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि मेघा ने खुद अपने हाथ से अपने रिपोर्ट कार्ड में साइन किया था, क्योंकि पापा को कैसे दिखाते कि हम फेल हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बता देते पापा को, तो वो पढ़ाते और उसके बाद अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आते। लेकिन बच्चे बहुत डरते थे मम्मी पापा से उस समय। मेघा पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी। नवंबर में स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिला स्तर का। उसमें मेघा ने एक बहुत ही अच्छी सी हंसने वाली पेंटिंग बनाई थी, तो उसको पूरे जिले में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक बड़ी सी शील्ड मिली। अब स्कूल में वो स्थापित होने लगी थी और उसका सम्मान बढ़ने लगा था। स्विमिंग कंपटीशन में तो वो फर्स्ट आई ही थी और पेंटिंग कंपटीशन में पूरे जिले में सेकंड। जब 5वीं कक्षा में फेयरवेल हुई तो मेघा सफेद शरारा सूट पहनकर गई थी और उसने स्टेज पे गाना गाया था। कौन सा गाना गाया था? कांची रे पीत मेरी रुक जाना जा दिल तोड़ के, ओ रुक जाना जा दिल तोड़ के। कांची रे पीत मेरी रुक जाना जा दिल तोड़ के, ओ रुक जाना जा दिल तोड़ के। तब प्रिंसिपल ने उसको बुलाकर शाबाशी दी थी और क्लास में उसका नाम ऊंचा हो गया था। ऐसे ही है बचपन की यादें। चलिए अब इसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। मेघा के बड़े भैया उसको बहुत प्यार करते। उन्होंने उसको बैडमिंटन खेलना सिखाया, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स भी उन्होंने ही सिखाया। घर के पीछे क्लब था तो वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल थी, तो बड़े भैया के साथ मेघा खेलती थी। बड़े भैया सीटी भी बहुत अच्छे बजाते थे। उन्होंने मेघा को सीटी बजानी भी सिखाई थी। जब मेघा सीटी बजाती तो ऐसा लगता जैसे कोयल बोल रही हो। कैसे बजाती थी मेघा सीटी? तो बस मेघा ऐसे सीटी बजाती थी। मेघा ने अपनी लाइफ टाइम में एक वॉर भी देखी 1971 में। 1971 में जब भारत पाक वॉर छिड़ी तो बच्चों के स्कूल में बम वर्षा से बचने के उपाय सिखाए गए। कैसे मैदान में, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कब की, 1971 वॉर की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ी थी। 1971 में जब भारत पाक वॉर छिड़ी तो बच्चों को स्कूल में बम वर्षा से बचने के उपाय सिखाए गए। कैसे मैदान में गड्ढे खोदकर उसमें छिपना चाहिए। रात में सारी लाइट्स बंद करके रखी जाती, केवल गैलरी की लाइट जो बाहर कहीं से भी दिखाई नहीं देती थी उसको जलाकर बच्चे पढ़ते। पूरे शहर में ब्लैकआउट रहता। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता था कि अगर कभी दुश्मन के प्लेन्स जो हैं वो शहर के ऊपर आ जाए तो उन्हें पता ना चले कि कहाँ पे शहर है। तो पूरे शहर के गांव में सब जगह लाइट्स बंद रहती थी, पूरा जिससे नीचे अंधेरा दिखाई दे। पापा आंगन में बैठकर रेडियो से न्यूज़ सुनते और बच्चे इंदिरा गांधी के जोशीले भाषण सुनते। बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब उस वॉर में भारत ने विजय प्राप्त की तो बच्चे फूले नहीं समाए थे। तब आज़ादी मिले ज़्यादा समय नहीं हुआ था तो बच्चों में इसकी भावना बहुत अधिक थी देशभक्ति की। घर में भी ऐसे शिक्षा दी जाती थी कि बच्चे देशभक्त बने। उस समय क्रिकेट मैच, टेस्ट क्रिकेट मैच का भी बड़ा क्रेज था, अभी भी है और उस समय एकदम नया नया था। तो एक बार स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ। बच्चे मम्मी पापा के साथ मैच देखने गए। उस समय कई जो स्टेडियम रहता था उसमें कई तरह के होते थे, सीढ़ियाँ होती थी, उनके टिकट कम होते थे और जनरली सब लोग सीढ़ियों पे बैठते थे और कुछ जो लोग महंगे टिकट लेते थे वो शामियाना में बैठते थे। तो क्योंकि अब 4 बच्चे थे और मम्मी पापा हम लोग 6 लोग थे सब लोग, तो इसलिए सीढ़ियों पे बैठ के मैच देखा था, लेकिन गए सब थे। बच्चे मम्मी पापा के साथ मैच देखने गए। सीढ़ियों पर बैठकर मैच देखते हुए जब कोई चौका या छक्का लगता तो सब लोग उछलने लगते। मम्मी साथ में पूरी सब्जी और पॉपकॉर्न वगैरह लेकर गई थी। अतः बच्चों को पिकनिक का भी बड़ा मजा आया। जब पापा टूर पर जाते तो कभी कभी बच्चे भी उनके साथ घूमने जाते। धूल भरी सड़कों पर या बनते हुए ब्रिज पर बच्चे मस्त घूमते। बच्चों के पापा सिविल इंजीनियर थे तो कहीं सड़कें बनवाते थे, ब्रिज बनवाते थे, बिल्डिंग्स बनवाते थे, तो बच्चे साथ में जाते थे टूर में, तो उनको भी एक्सपोजर होता था और बनती हुई देखते थे सड़क कैसे बनती है, ब्रिजेस कैसे बनते हैं और बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, सब बच्चे देखते थे। जब पक्का ब्रिज बन रहा होता है तब नदी को पार करने के लिए नाव से टेम्पररी ब्रिज बना दिया जाता है। एक के पीछे एक नाव जोड़कर टेम्पररी ब्रिज बनाते हैं। तो कभी नाव से बने टेम्पररी ब्रिज को पार करते हैं तो कभी बनते हुए पुल पर बैठकर पिकनिक मनाते हैं। कभी रास्ते में पड़ते आम के बाग में दरी बिछाकर खाना खाया जाता और पीले पीले आम खाए जाते। एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, नॉर्मली बाय रोड बच्चे सब ट्रैवल करते थे, तो बच्चों को बहुत प्यास लगी और पास का पानी खत्म हो गया था। अब क्या करें, तो पापा ने कार के रेडिएटर में से पानी निकाला और उसको ठंडा किया और उसके बाद उसको बच्चों को पिलाया। कितना ध्यान रखते हैं मम्मी पापा लोग। ऐसे एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी जब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और सामने से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी तेज बारिश थी, चारों ओर एक ऐसे कुछ पर्दे जैसे डाल देते थे जिससे बारिश अंदर ना आए, और उसमें बहुत मुश्किल से पापा ने गाड़ी चलाई थी। तो बस ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बचपन की याद रह जाती हैं। उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर कभी ताई जी के घर चले आते थे, ताऊजी ताई जी के घर, कभी चाचा जी के घर चले आते थे। कोई भेदभाव नहीं था, चाहे मम्मी हो चाहे ताई जी हो, सब बराबर से प्यार करते थे। एक बार बच्चे अपनी ताई जी के घर गए थे तो बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ी कोठी थी और उसमें चारों ओर बहुत जमीन थी और झाड़ियाँ थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहाँ उन्होंने पहली बार काला नाग देखा, सांप देखा बच्चों ने। पता नहीं क्यों सारे नौकरों ने मिलकर उस सांप को डंडे से मारा और फिर जला दिया। एक बार एक सांप गरम तारकोल में फंस गया था, सड़क पे तारकोल में। मीका की मम्मी को बहुत दया आई, उसको बड़ी मुश्किल से डंडों की मदद से बाहर निकाला गया। तो बच्चों को सांप का बड़ा डर भी लगता और क्रेज भी होता अगर सांप कहीं दिख जाए तो। घर के पीछे गोमती नदी बहती थी, अक्सर सांप और कभी कभी भेड़िए भी आंगन में आ जाते। घर में अपनी गाय और भैंस पली हुई थी। अब तो कोई विश्वास नहीं करेगा, आजकल के बच्चे तो दूध पैकेट में देखते हैं या बॉटल्स में देखते हैं या डब्बों में देखते हैं, तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि घर के आंगन में या घर के कंपाउंड में गाय भैंस पहले पलती थी और बच्चे उन्हीं का दूध पी के बड़े होते थे। घर में अपनी गाय और भैंस पली हुई थी, बच्चे अपने घर की पली गाय का दूध पीते और भैंस के दूध से को बिलो बिलो कर जो है वो मक्खन निकाला जाता। घर में उस दूध को बिलोते थे और मक्खन निकालते थे। तो बस ऐसे ही बहुत से खट्टे मीठे अनुभव है बचपन के। फिर भी वो हंसता खेलता लहराता बचपन मेघा को बहुत याद आता है और शायद उसके जीवन का वो सबसे सुंदर समय था। तो बस मेरी कहानी इसके साथ ही मेरी कुछ नींद खुली और ऐसा लगा जैसे एक सपनों की दुनिया से बाहर आ गए और फिर से यथार्थ में वापस आ गए अपने बेडरूम में। और बहुत तेज़ गर्मी थी, गर्मी के दिन थे, तो उस तेज़ गर्मी में और यथार्थ के धरातल पर फिर वापस आ गए। लेकिन वो बचपन कभी नहीं भूलता, आज भी सपनों के जैसे आँखों में तैरता रहता है। तो बस यही कहानी थी मेरे बचपन की, मेघा के बचपन की। तो आशा है आपको पसंद आई होगी और सभी को अपने बचपन याद आ गया होगा। अगर आपको भी अपने बचपन के कोई ऐसे बहुत प्यारे से अनुभव याद आए तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, उनको मैं अपने चैनल में बाकी सबको सुनाऊंगी। ठीक है, ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी दूसरी कहानी के साथ। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।